نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سامعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے قبروں کی زیارت، قبروں کی زیارت. تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے اس میں کہ اس کا شرعی کیا حکم ہے، شرع میں اس کا قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے، کب یہ بدعت بن جاتی ہے اور کب یہ شرکیہ زیارت بن جاتی ہے، اور کیا جائز ہے یا نہیں قبروں کی زیارت. انشاءاللہ اس میں ہم آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہنوں، اس باب میں یعنی قبروں کی زیارت میں پہلے یہ بات ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا فرمایا تھا، یعنی اپنی قبر کے تعلق سے کیا فرمایا. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے تعلق سے کیا فرمایا. ایک امام مالک رحمہ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے امام موتا، یعنی انہی کے نام سے ایک کتاب ہے، امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے موتا، میم واو طاء الف موتا. اس میں وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. کیا دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم لا تجعل قبری، اللہم اے اللہ لا تجعل، نہ بنا قبری، میری قبر کو وثنا، وثن یعبدو، کہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں. اشتد غضب اللہ، کیوں دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ فرماتے ہیں اشتد غضب اللہ، ان قوموں پر اللہ کا غضب خیر نازل ہوا. کون سی قوموں پر؟ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، جنہوں نے اپنی قبروں کو، اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا. تو یہ دعائیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ آپ کو اندیشہ تھا کہ آگے چل کر امت میں یہ فتنہ ہوگا. جیسے دیکھیے، آج کئی لوگ بزرگوں کی قبروں کے متعلق اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ غلو کرتے ہوئے نتیجہ کہاں تک نکل پڑ رہا ہے کہ وہ انہیں بتوں کی حیثیت دے رہے ہیں، اس کی پرستش ہونے لگی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. اور دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول کی کہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت مدینے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تین دیواروں میں چھپا دیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور حفاظت و نگہبانی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرتا تو وہ بھی پوجا پاٹھ کی جگہ بن جاتی، وہ بھی ایک عبادت گاہ بن جاتی، اور سب میں بڑی عبادت گاہ بن جاتی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ میں نے پوجا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے وہی ہے پوجا. غیر اللہ کے لیے جو ہوتی ہے عبادت وہ پوجا ہے. تو نعوذ باللہ، وہ غیر اللہ کے لیے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، عامۃ الناس میں جو خاص پھیلی ہوئی ہے یہ چیز کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ باتیں سمجھائیں انشاءاللہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. اللہم لا تجعل قبری وثنا. وثن کسے کہتے ہیں؟ ایسا بت یا ایسا اسٹرکچر جس کی عبادت کی جائے. جیسے اس حدیث کے آگے کے الفاظ سے ہی واضح ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، اور اب مدینے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس کے اطراف مضبوط دیواریں ہیں بنی ہوئی، تین دیواریں، یعنی ایک کے بعد ایک تین دیواریں ہیں، حتیٰ کہ کوئی بادشاہ کوئی بھی انٹر، یعنی انہوں نے کوئی دروازہ رکھا ہی نہیں ان تین قبروں کے اطراف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تین قبروں کے اطراف دیواریں ہیں، اور اتنی مضبوط اور ایسی دیواریں ہیں کہ اسے کوئی پھلانگ نہیں سکتا، کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ کوئی بادشاہ بھی نہیں جا سکتا اس کا، یعنی ये जो वीडियोस आते हैं बीच बीच में, आप भी देखते होंगे कहीं कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं ट्विटर पे, कहीं लाइक अलग अलग जगहों पर, जैसे इंटरनेट पे लोग डालते हैं फलां के रसूल की खबर ऐसी है, फलां ऐसी है, इसके ऊपर फलां चादर है, ये है फलां, सफाई के लिए लोग अंदर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल की खबर और आप के बाजू दो जो सहाबा हैं हजरत अबू बकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, उन दोनों की उन तीन खबरों के अतराफ में काफी बड़ी दीवार है और वो दीवार से उसे ढांक दिया, उन खबरों को ढांक दिया गया है दीवार से। आप मुस्तनद ज़राए से मालूम करिए, आप बिल्कुल ये आपको मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह कि मदीने में जो मस्जिद नबवी में जो खबर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके अतराफ बिल्कुल एक दीवार, ऐसी दीवार है, तीन दीवारें, एक भी नहीं बल्कि तीन दीवारें हैं, तीन दीवारों से जो ढकी हुई है, उसे कोई नहीं देख सकता। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी और अल्लाह ताला ने आप की खबर को ऐसी हिफाजत कर दिया, निगहबानी की अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इस एक बात से यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कोई चीज को, यानी कोई खबर को या फिर कोई खास जगह को, उस जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं तो लोग क्या करने लगेंगे, अगर उस जगह को अब छूट दे दिया जाए तो इबादत करने लगेंगे। अब एक मिसाल मैं आपको दूं, एक मिसाल से आपको वाजह हो जाएगा। किसकी मिसाल? सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की। आप तारीख उठाकर देखिए, आप तारीख पढ़कर देखिए, आप उसमें हजरत उमर रजी अल्लाह की हिस्ट्री देखिए, उसमें लिखा है कि अल्लाह के जब उमर रजी अल्लाह ने क्या किया, उस दरख्त को जड़ से काट देने का हुक्म सादिर किया जिसके नीचे बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर लोगों से बैत ली थी, हुदैबिया के मकाम पर लोगों से बैत ली थी, उस दरख्त को कटवा दिया। कौन? हजरत उमर रजी अल्लाह ने। ये दरख्त काटने की वजह क्या थी? ये दरख्त काटने की वजह ये थी कि लोग वहां जाकर उसके नीचे नमाज पढ़ने लगे थे। लोग वहां जाकर क्या करने लगे थे? नमाज पढ़ने लगे थे कि ये मुतबरिक जगह है, यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और यहाँ पर आपने बैत ली थी, और ये तमाम सोचकर लोग क्या करने लगे, वो दरख्त के नीचे जाने लगे और वहां इबादतें करने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी दौर में ये चीज नहीं हुई थी, किसी सहाबा ने यह अमल नहीं किया था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा कि ये शिर्क की शुरुआत कर रहे हैं और उन्होंने उस दरख्त को काट दिया। किस वजह से? कि सैयदना उमर रजी ने शिर्क का फितना फैलने के खदशे की वजह से उसको कटवा दिया था। यही होता आ रहा है, यही होता आ रहा है कि औलिया व सालिहीन की खबरों को ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता पूजा गाह बना लिया जा रहा है। इसीलिए बहनों जरूरी है कि खबरों की जियारत का शरई हैसियत क्या है, उस चीज के बारे में हमारा इल्म हो। अब देखें इंशाल्लाह शरई हैसियत क्या है। तो शरई जियारत यह है कि यानी खबरों की उस वजह से जियारत करना कि इससे आखिरत की याद आए और अहले कब्रस्तान को सलाम करना, यानी ये जायज़ है। शरई हैसियत क्या है खबरों की जियारत की? कि आप इस वजह से जा रहे हैं, आप मतलब ये कि सामियात तो नहीं जा सकती हैं खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात, मर्द हजरात जो खबरों की जियारत का उनको हुक्म है, किस लिए है? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम खबरों की जियारत करो, और क्यों? क्योंकि ये आखिरत की याद दिलाती हैं। कब्रों की जियारत का वजह क्या है? क्योंकि ये आखिरत की याद दिलाते हैं। तो कब्रों की जियारत की शरई हैसियत क्या है? कि आखिरत की याद आए और अहले कब्रस्तान को सलाम किया जाए और अहले कब्रस्तान के लिए दुआए मगफिरत की जाए। अच्छा, और एक बात ये है कि बिदअत कब हो जाती है, कब्रों की जियारत बिदअत कब हो जाती है? कि कब्र के पास जाकर अगर अल्लाह की इबादत करने का कसद करें, यानी आप जा रहे हैं खबर के पास और वहां जाकर खास कोई खबर के पास जाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो फिर ये बिदात है। या फिर खबरों से तबर्रुक हासिल करने की नीयत से जाकर वहां इबादत कर रहे हैं तो फिर ये भी बिदात है। फिर कब्रिस्तान में पहुंचकर हदिया व सवाब की नीयत कर रहे हैं तो ये भी बिदात है। फिर खबरों की तरफ दूर दराज का सफर कर रहे हैं तो ये भी बिदात है। कोई खबर यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी को यानी मस्जिद नबवी को के लिए सफर करना जायज़ है, लेकिन ये सोच करके हम खबर की जियारत करने जा रहे हैं तो नऊज़ बिल्ला ये बिदअत होती है। और इस तरह की दीगर चीज़ें, जैसे कोई हदिया सवाब की नीयत से जा रहा है, कोई तबरुक हासिल करने की नीयत से, ये तमाम चीज़ें बिदात हैं ज़ियारत के ताल्लुक़ से, ख़बरों की ज़ियारत के ताल्लुक़ से। अब ख़बरों की ज़ियारत शिर्क कब हो जाती है, ये भी एक दो पॉइंट्स देख लें कि शिर्क जब होती है, और शिर्क क्या है, जो कि तौहीद की मुनाफी है, क्योंकि इसमें गैर अल्लाह की इबादत बजा लाई जाती है। जैसे मसलन अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मांगने के लिए जाना, यानी कोई ऐसी खबरों के पास जाना कि वहाँ जाकर मांग रहे हैं, डायरेक्ट उनसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, आप हमारे लिए कीजिए, नहीं, तसव्वुर ये हो रहा है कि वो वहाँ हैं और वो हमारी बात को सुन रहे हैं और वो पूरा करेंगे उस चीज़ को। तो नऊज़ बिल्लाह, इस तरीके का अकीदा हराम है, शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया, कभी सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कभी सहाबा कराम ने आप की खबर पर जाकर ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ कीजिए, हम परेशान हैं, या फिर कभी सहाबा कराम ने ये नहीं किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर ये कहा कि अल्लाह के रसूल हम परेशान हैं, हमारे लिए ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, फलां कीजिए। नऊज़ु बिल्लाह, ये कभी सहाबा ने इस तरह का शिर्क नहीं किया। ये शिर्क है, अल्लाह ही से मांगना है जो कुछ भी मांगना है। अल्लाह बार बार कुरान में फरमाता है कि जब ऐ नबी, जब मेरे बंदे तुम्हारे मेरे मुतालिक तुमसे सवाल करें तो तुम कहो मैं उनसे करीब ही हूँ। क्या है वो आयत? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? ऐ नबी, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक तुमसे सवाल करें, व इज़ा, और जब सअलक सवाल करें, इबादी मेरे बंदे, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी, उनसे कहो अन्नी फइन्नी करीब, बेशक मैं करीब ही हूँ, उजीबु, मैं जवाब देता हूँ, दावतद दाई, पुकारने वाले की पुकार को, इज़ा दआन, जबकि वो पुकारे, फलयस्तजीबु ली वलयूमिनु बी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस चाहिए कि वो मुझी पर ईमान लाए, मुझी से मांगे। अगर अल्लाह ताला ने साफ ये बात फरमा दी और अगर बंदा जाकर किसी और से मांगे तो अल्लाह ताला सख्त नाराज होते हैं और ये शिर्क है। तो किसी खबर पर जाकर उन खबरों से मांगना, या फिर उन खबरों से मांगने के अलावा उनसे ये कहना कि आप हमारे लिए मांगिए, तो ये शिर्क अफ़ाल है। या खबर के पास जियारत करने के लिए जा रहे हैं, किस लिए? कि इनसे हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, ये हमारे हाजत रवा हैं, तो ये भी शिर्क है। या फिर कोई खबरों की जियारत के लिए इसलिए जा रहा है कि वहाँ गैर अल्लाह के नाम से ज़ुबह करे, मन्नतें मांगे, या दीगर इस तरह के शिर्किया काम के लिए कब्रस्तान को जा रहा है, तो ये शिर्क है। और ख़ासकर ख़वातीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया, लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल क़ुबूर। किस पर? ज़ाइरातिल क़ुबूर, खबरों की जियारत करने वाले पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। इस हदीस को अहले सुन्नत ने रिवायत किया है, तो फिर हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह हम भी रुकेंगे इस चीज़ से और हमारी बहनों को भी रोकेंगे जो खबरों की जियारत करती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिर्क व बिदअत से महफूज रखकर सही इल्म अल्लाह ताला का हासिल करने और उस पर ईमानदारी के साथ अमल करने वाला हमको बनाए। आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।